मिस्टर जॉनसन के घर पर। मिस्टर जॉनसन परेशान थे। निक को उन सबकी सच्चाई पता चल चुकी थी और वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जिस हिसाब से वो वहां से निकला था उससे वो सब बहुत परेशान थे। निक को सब पता चल गया, कितना दर्द था वो बोला। किरण बोली, अब वो वापस कभी नहीं आएगा। राधा ने थोड़ा सोचा और कहा, थोड़ा टाइम दो उसे, जब वो समझेगा तो जरूर आएगा। अलीशा सोफे पर बैठी थी। भाई की शादी हो चुकी है शायद, अलीशा की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देख रहे थे। अलीजा उसके पास ही थी। क्या बकवास कर रही है, अगर उनकी शादी होती तो किसी को पता नहीं चलता क्या? मैंने वेडिंग रिंग देखी उनकी फिंगर में, अलेक्सा ने दूर से कहा। मैंने भी, और मैं यही पूछने वाली थी कि इसने शादी कब की। मिस्टर जॉनसन बोले, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है भाई ने सीक्रेटली शादी की हो, अलीशा ने कहा। वो अपनी वाइफ को सबसे छुपाकर रखना चाहते हैं, और वो ये बात कर रहे थे कि फायर अलार्म हुआ था घर पर। अगर फायर अलार्म हुआ भी होगा तो मतलब उनकी वाइफ उस वक्त घर पर होगी, तभी वो इतने गुस्से में थे। किरण सोचने लगी। वो सभी को बोली, अगर निक की वाइफ उस वक्त घर पर होगी और उसे कुछ हो गया होता तो निक सबसे नफरत करने लग गया होता। क्या फर्क पड़ता है, वो तो अभी भी हम सबसे नफरत ही करता है। राधा ने फौरन उससे कहा, किरण संभालो खुद को और टाइम दो उसे थोड़ा। क्यों ना हम यूएसए चले जाएं थोड़े टाइम के लिए। मैं भी यही सोच रहा था कि हमें यूएसए चलकर रहना चाहिए, मिस्टर जॉनसन ने कहा। शायद निक के सामने हो तो वो हमें अपनाने की कोशिश भी करे, अलेक्सा इस बारे में बोली। अभी एक दो दिन रुक जाओ, उसे थोड़ा टाइम दो। अचानक से उसके सामने उसकी फैमिली आकर खड़ी हो गई है, जबकि हमेशा से वो अकेला ही रहा है। मेरे बेटे ने अपना परिवार होते हुए भी अनाथों की जिंदगी बिताई, राधा ने भावुक होकर कहा। वो सब लोग निक से मिलकर बहुत बेचैन हो गए थे, इतने दिनों बाद उन्होंने उसे देखा था। लेकिन दूसरा सच ये भी था कि वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता था। निक और प्रियल वापस यूएसए अपने घर आ गए। निक पूरे रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोला, वो बस प्रियल का हाथ पकड़कर बैठा रहा। यूएसए में निक अपने घर पहुंचा, उसकी आंख अभी भी नम थी। प्रियल ने आते ही निक से दोबारा पूछने की कोशिश की, क्या हुआ आपको, आप रो रहे हैं? निक ने उसे रोका और बीच में ही कहा, कुछ नहीं हुआ, एक काम करो, जिम एरिया के अंदर एक वुडन अलमारी है, वहां एक मेडिसिन का बॉक्स रखा है, जाओ उसे लेकर आओ। प्रियल गई और जल्दी से जाकर वो बॉक्स लेकर आ गई। निक ने कुछ मेडिसिन निकालकर कहा, ये मेडिसिन लेने के बाद मुझे नींद आ जाएगी, तो टेंशन मत लेना तुम। प्रियल बोली, पर आपको क्या हुआ, उसने फिर से पूछने की कोशिश की। मैं रेस्ट कर लूं थोड़ा, शायद जरूरी भी है, उठकर सब कुछ बता दूंगा, तब तक तुम भी सो जाना या कुछ और काम कर लेना, किसी को कॉल मत करना प्लीज, एक बार मैं बता दूंगा खुद ही सब कुछ, निक ने कहा। प्रियल निक की इस तरह देखकर उदास हो गई, उसकी आंखों से भी आंसू आने लगे। वो सिसकते हुए पूछने लगी, क्या हुआ आपको, आप ये मेडिसिन क्यों ले रहे हो, आपको कुछ हो गया तो? निक वो मेडिसिन साइड में रखकर एक बार प्रियल से बात करने लगा। निक ने कहा, इधर आओ मेरे पास। निक ने प्रियल को अपने पास बैठा लिया। वो प्रियल का हाथ पकड़कर बोला, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस इमोशनली थोड़ा वीक फील हो रहा है। ये मेडिसिन्स नॉर्मल स्लीपिंग पिल्स हैं, यानी नींद की गोली। कुछ देर सोऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, भूल जाऊंगा एक बार सब कुछ, बस तुम मेरे ऊपर मत गिर जाना। प्रियल बोली, अगर आपको सोना है तो आप ऐसे ही सो जाइए ना, इन दवाइयों की क्या जरूरत है, ऐसे नींद नहीं आएगी, माइंड में वही सब चलता रहेगा और फिर स्ट्रेस हो जाएगा, पैनिक अटैक्स एंड ऑल। क्या मैं सुला दूं आपको, बस मेडिसिन नहीं प्लीज। अच्छा, पर तुम कब से इतनी बड़ी हो गई, जिसे खुद की नींद की ही फिक्र रहती है वो मुझे सुलाएगी। हाँ, मैं जैसा कहूँ आप वैसे ही करिएगा बस, प्रियल ने उसे लेटने के लिए कहा। वैसे भी तुम जैसे कहती हो मैं वैसे ही करता हूँ, निक बोला और मुस्कुरा कर लेट गया। प्रियल ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया। प्रियल धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसके बालों में फिराने लगे। प्रियल उंगलियां फिराते हुए बोली, चलिए तो फ्यूचर में चलते हैं। तुम्हारे पास टाइम मशीन है क्या, जो मुझे फ्यूचर में लेकर जा रही हो? हाँ, इमेजिनेशन की टाइम मशीन। कितने साल आगे? शायद 5 साल। हो सकता है तब तक आप बच्चों के लिए रेडी हो जाओ। तुम बड़े अच्छे लगते हो गुड़िया। हाँ, आपको? बहुत। मेरे लिए तुम भी बड़ी जैसी ही हो, तुम्हारी हरकत और जब तुम गुस्से में मुझे देखती हो। अच्छा, आपको बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय? दोनों। और तुम? मुझे तो लड़की अच्छी लगती है, वो भी बिल्कुल आपके जैसी होनी चाहिए, नीली आंखों वाली। तुम ना बिल्कुल पागल हो, मैं चाहता हूँ मेरी बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। पता है जब तुम गुस्से में मुझे देखती हो तो तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो जाती हैं। तुम सच में बहुत प्यारी लगती हो और तुम वैसे देखकर मुझे हंसी आती है, प्रियल सोचते हुए बोली। होप सो कि आप इन बातों में अपना सारा दर्द भूल जाओ, निक एक्साइटेड होते हुए बोला। और पता है, जब तुम सबको थोड़ा थोड़ा करके बताती हो तो जल्दी जल्दी बोलने लगती हो। हाँ, ताकि मेरी बात जल्दी से खत्म हो जाए। और पता है, हमारी वेडिंग हुई थी तब, जब किस करने की बारी आई तो तुमने डर से अपनी आंख बंद कर ली थी, मेरी मिस शर्मा। प्रियल और निक बात करने लगे। बात करते करते निक को नींद आ गई। निक प्रियल की गोद में लेट रहा था तो प्रियल ने भी उठने की कोशिश नहीं की, वो ऐसे ही रही और थोड़ा सा पीछे होकर सो गई। अगले दिन प्रियल धीरे से उठी, निक अभी भी सो रहा था। प्रियल ने उसे देखा और उसके माथे पर हाथ फेरा, फिर वो रेडी होकर इंस्टीट्यूट चली गई। निक थोड़ी देर बाद उठा तो देखा प्रियल घर पर नहीं थी। निक उसे इधर उधर देखने लगा और किचन में पहुंचा। वहां उसे एक नोट दिखाई दिया। प्रियल ने फ्रिज पर उसके लिए नोट लिखकर छोड़ा था। उसने लिखा था, डियर हस्बैंड कम टीचर दा, मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी है और राइस ही बनाए हैं, प्लीज आप भी ब्रेकफास्ट करके आ जाइएगा। और हाँ, जिम क्लास ज्वाइन करने भी जाऊंगी आज मैं, तो आज मिलते हैं जिम में, बाय। निक ने मुस्कुराते हुए बोला। यही बात ही मुझे मैसेज करके भी तो बता सकती थी, पर इसका बचपना कभी खत्म नहीं होगा। इंस्टीट्यूट तो जाना ही है, रॉन और अंकित को सब कुछ बताना होगा। और ये पागल, पहले बता देती जिम ज्वाइन करना है। बात कर लेता हूँ कबीर से, वो भी इंडिया से आया है और अभी 4-5 दिन पहले ही तो ज्वाइन किया है उसने। चलो कोई नहीं, इंस्टीट्यूट चलकर देखते हैं। इंस्टीट्यूट में प्रियल, आरोही और आलिया ब्रेक टाइम में लंच कर रहे थे। जैन भी उनके साथ था। आलिया ने खाना खाते हुए पूछा, कैसा रहा हनीमून? प्रियल हल्के चिढ़े अंदाज में बोली, इसे हनीमून कहते हैं। आरोही बोली, हमें तो पता है हम सिंगल हैं। जैन ने कहा, भाई ने सुन ली ना तुम्हारी बात तो नाराज हो जाएंगे। प्रियल बोली, जैन मुझे जिम ज्वाइन करना है। इतनी फिट तो हो, क्या करोगी जिम ज्वाइन करके? हमारे घर में है ना जिम। जैन ने कहा, मुझे खुद से एक्सरसाइज करनी थोड़ी ना आती है। आलिया ने बीच में कहा, भाई को आती है ना, उनसे सीख लो। आरोही इस बारे में बोली, जिम तो मुझे भी ज्वाइन करना है, नया जिम ट्रेनर देखा कबीर सर? आलिया ने दोनों को देखा और कहा, हाँ यार, मैंने भी देखा था उसे, चल मैं भी प्रियल तेरे साथ जिम ज्वाइन करूंगी, कबीर सर तो बहुत हॉट है। आलिया की बात सुनकर जैन उसे गुस्से में देखने लगा। जैन उससे बोला, भाभी है वो मेरी, तो उसे ना बहकाओ मत। पर मैं बहकाना चाहती हूँ जैन, प्रियल उसकी तरफ देखते हुए बोली और खड़ी हो गई। आलिया ने कहा, मी टू। वो भी खड़ी हो गई। जैन हक्का बक्का था, पर जैन कुछ बोलता उससे पहले ही वो तीनों जिम की तरफ चली गई। वो मुंह बनाकर वहां बैठा था कि तभी निक वहां पर आ गया। निक ने पूछा, व्हाट हैपेंड जैन?
कुछ नहीं भाई, वो भाभी जिम।
तुम मना किया था ना मैंने प्रियल को भाभी कहने से? हाँ, उसने मुझे बताया था जिम ज्वाइन करने के लिए। ठीक है ना, करने दो, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो?
भाई वो कबीर सर।
क्या कबीर सर?
जैन बोला, वो आलिया, आरोही और प्रियल उस कबीर को हॉट बोल रही थी।
निक ने हंसते हुए कहा, तो तुम जेलसी फील हो रहा था? तुम टेंशन मत लो, वो तीनों मजाक कर रही होंगी, तुम्हें परेशान करने के लिए बोल रही होंगी। चलो जिम में चलते हैं।
इंस्टीट्यूट का जिम एरिया में प्रियल, आरोही और आलिया तीनों जिम में आई, पर उस टाइम कबीर जिम में नहीं था। प्रियल आते ही इधर उधर देखते हुए बोली, कहाँ है तुम्हारा वो हॉट मुंडा? आरोही ने भी देखा, बाहर गया होगा। आलिया ने कहा, चलो तब तक हम खुद से कुछ कर लेते हैं। प्रियल बोली, मुझे और तो कुछ नहीं आता, पर हाँ ट्रेडमिल पर जा रही हूँ मैं, पहले भी किया है थोड़ा बहुत। प्रियल ट्रेडमिल पर रनिंग करने लगी, अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने लगी। पर तभी कबीर ने आकर प्रियल को थाम लिया। कबीर ने प्रियल को देखा तो वो उसमें खो गया, पर प्रियल कबीर के ऐसे पकड़ने पर अनकंफर्टेबल हो गई। कबीर सोचते हुए अपने मन में बोला, कितनी मासूमियत है इसमें। प्रियल तुरंत बोली, छोड़िए मुझे। पर कबीर को प्रियल की आवाज़ सुनाई नहीं दी और वो उसको देखता रहा। तभी निक वहां पर आया। निक ने थोड़ा जोरदार आवाज में कहा, व्हाट हैपेंड? निक की आवाज से कबीर ने खुद को संभाला। कबीर ने कहा, वो ये ट्रेडमिल पर से गिर जाती, पर उससे पहले मैंने संभाल लिया। प्रियल गुस्से में बोली, डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन। ये बोलकर प्रियल वहां से गुस्से में चली गई। कबीर बोला, पर मैंने तो उसे संभाला था, फिर मन में सोचा और खुद ही अपने होश खो बैठा। निक ने कहा, इट्स ओके कबीर, मिस शर्मा थोड़ी शर्मीली हैं, तब शायद उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया हो, डोंट वरी, मैं देखता हूँ। निक कहकर प्रियल के पीछे गया। वो गार्डन में अकेली बैठी थी, वो उदास दिख रही थी। निक उसके पास जाकर बोला, इतना गुस्सा? वो बस तुम्हें संभाल रहा था। संभाल रहा था या घूर घूर के देखे जा रहा था? बस मुझे नहीं पसंद कोई मुझे ऐसे टच करे, उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। क्या सोच रहा होगा वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जो सोचना है सोचने दो।
बेचारा कबीर बच गया, वरना मिस शर्मा आज तो सिर फोड़ देती उसका।
प्रियल बोली, हाँ मुझे कोई डंडा नहीं मिला था, वरना पक्का फोड़ देती उसका सिर। वो दोनों बात कर रहे थे तभी कबीर वहां पर आया। वो आते ही प्रियल से बोला, सुनिए मेरा इरादा गलत नहीं था, अगर फिर भी आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। निक ने सोचते हुए खुद से कहा, कमॉन मिस शर्मा,
माफ कर भी दो बेचारे को, इसके चक्कर में ये मेरा सिर ना फोड़ दे। प्रियल खड़ी हुई और कहा, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम आप भी ध्यान रखना कि किसी को ऐसे टच करने से पहले।
हाँ जरूर, कबीर बोला।
निक ने कहा, जाइए मिस शर्मा, अपना जिम ज्वाइनिंग का फॉर्म भर दीजिए। प्रियल कोचते हुए बोली, घर चलिए, आपको तो मैं करवाऊंगी जिम ज्वाइन। कबीर ने भी जिम की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहा,
हाँ मिस शर्मा प्लीज चलिए।
प्रियल बोली, मेरा नाम प्रियल है ना कि मिस शर्मा, और मुझे कोई जिम नहीं ज्वाइन करना। आप
इसका मतलब आप अभी तक गुस्सा है?
निक ने कहा, प्रियल गो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को जिम ज्वाइन करना कंपलसरी है। मैं फर्स्ट ईयर से हूँ सर, तो। निक ने कहा, लेकिन फिर भी ज्वाइन कर लो, गो। और कबीर, तुम यहाँ के ऑफिशियल फिजिकल ट्रेनर हो, किसी भी स्टूडेंट को सॉरी बोलना जरूरी नहीं है। किसी को ज्वाइन करना है तो करे, वरना पनिशमेंट के लिए रेडी रहे। मिस प्रियल शर्मा, आर यू रेडी? प्रियल सोचते हुए बोली, रेडी तो आप ही रहिएगा घर पर। निक ने जबरदस्ती प्रियल को जिम में भेज दिया, वो भी कबीर के साथ। फिर निक रॉन और जिनी के रूम में आया। वहाँ उसने रॉन, जिनी, अंकित और एमा को भी बुला लिया। जिनी ने निक से सबसे पहले पूछा, कैसा रहा तेरा हनीमून?
निक ने कहा, जैसा तेरा रहा होगा। रॉन, सॉरी, बट क्या कोई और नहीं मिली तुझे?
रॉन बोला, नहीं, क्योंकि मुझे यही चाहिए थी। एमा ने यहाँ बुलाने का कारण पूछा, बीच क्लास में क्यों बुलाया निक तुमने? अंकित भी बोला, हाँ मैं भी बिजी था निक। निक ने सबकी तरफ देखा और कहा, मुझे जॉनसन के बारे में कुछ जरूरी बात बतानी थी। एमा बोली, तो घर बुला लेते अपने।
घर कैसे बुलाता?
जिनी ने कहा, भूल गए, अब शादी हो गई, अपने निक की प्राइवेसी चाहिए होती है अपनी बीवी के साथ। निक ने कहा, हाँ आज वैसे भी प्रियल का मूड थोड़ा खराब है। जिनी ने पूछा, क्या हुआ, ठीक तो है ना? वो जिम ज्वाइन करने गई थी, ट्रेडमिल पर गिरने वाली थी कि कबीर ने संभाल लिया। इस चक्कर में कबीर ने उसे टच किया तो उसे अच्छा नहीं लगा। अंकित बोला, कबीर अच्छा इंसान है, उसका बैकग्राउंड वगैरह।
रॉन ने कहा, शायद प्रियल को गलतफहमी हो गई होगी।
निक ने कहा, हाँ पर घर जाकर मेरी क्लास लगेगी अब, मैंने जबरदस्ती जिम में जो भेज दिया उसे। एमा बोली, जब उसका मूड नहीं था तो क्या जरूरी था, थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा वो छोड़ो, मेरा सुनो, पता है मैं लंदन गया था तब पहली बार मिस्टर जॉनसन से मिलने उनके घर गया, तब वो घर पर नहीं था, उसकी फैमिली थी जब मैं गया। मैंने उसकी फैमिली को मिस्टर जॉनसन की बात की और मेरे जाते ही उन्होंने मेरे घर पर फायर अलार्म करवा दी। ये बात सुनकर सब शॉक्ड हो गए। अंकित ने पूछा, प्रियल कहाँ थी तब?
घर पर।
जिनी उसके पास आई और बोली, मैंने कहा था ना तुझे प्रियल को साथ नहीं ले जाने के लिए, ठीक तो है ना? वो चोट तो नहीं लगी ना?
हाँ वो तो ठीक है। फिर मैं वापस मिस्टर जॉनसन के घर गया तो मैंने उसके घर पर कुछ फोटोग्राफ्स देखे।
रॉन ने पूछा, कैसी फोटोग्राफ्स?
मेरी मॉम और मिस्टर जॉनसन की वेडिंग की, मिस्टर जॉनसन और कोई नहीं, मेरे डैड हैं। सब फिर से शॉक्ड हुए।
ऐसा नहीं हो सकता, सब एक साथ बोले।
ऐसा ही हुआ है, निक ने कहा।
इस पर तो यकीन नहीं हो रहा, रॉन बोला।
मुझे भी नहीं हुआ था, पर सच्चाई यही है।
एमा बोली, इसका मतलब तुम अब जॉनसन को उसके क्राइम के लिए सजा नहीं दिलवाओगे?
मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आदमी मेरा क्या लगता है, मेरे लिए बस वो मेरी मॉम और एली का मर्डरर है।
अंकित बोला, निक तुझे ये सब पता चला होगा तो तुम तो इमोशनल ट्रॉमा में चले गए होंगे, बेचारी प्रियल डर गई होगी।
हाँ पर बहुत अच्छे से संभाला उसने मुझे।
पर उसे नहीं पता था तुझे कौन सी मेडिसिन लेनी थी, जिनी ने कहा, और फिर उसने पूछा, तुमने बताया?
हाँ मैंने बताया था, पर उसने मुझे मेडिसिन लेने ही नहीं दी, वही मेरी मेडिसिन है, उसने मुझे बार बार बहुत अच्छे से संभाला।
एमा निक से बोली, अच्छा हुआ तूने सब कुछ बता दिया, ठीक है रात को मिलते हैं तेरे घर पर डिनर के लिए।
और डिनर बनाएगा कौन, होटल में खा लेना, आ जाना सारे।
होटल में क्यों खाएंगे, तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, जिनी बोली।
मैं बिजी हूँ, मुझसे नहीं बनेगा, एटलीस्ट 9 बजे से पहले तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होने वाला। घर पर चले जाना, बना लेना, खा लेना और मेरी वाइफ को भी खिला देना, चलो चलता हूँ मैं।
ये कहकर निक निकल गया। कबीर बस प्रियल के बारे में ही सोचे जा रहा था। कबीर उसके बारे में सोचते हुए बोला, पता नहीं वो मेरे दिल से निकल क्यों नहीं रही है, कितना ज्यादा गुस्सा हो गई थी मुझ पर, गुस्से में भी खूबसूरत लग रही थी। मिस शर्मा आपको देखकर कुछ कुछ होने लगा है, लग रहा है मानो हम में एक अनजाना सा रिश्ता है, हम जाने पहचाने से अजनबी हैं।